भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
भगवान वन में जा रहे हैं। वनवासियों का जो प्रेम है उसको देख देख कर भगवान को बड़ा अचंभा होता है। ज्ञानी लोगों का जो भाव होता है उसकी अपेक्षा भगवान को अपट लोगों के भाव से बड़ी प्रसन्नता होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां जहां भगवान के लोगों ने दर्शन किए उन लोगों का मोह और मद मिट गया और राम जी के जाने से उनके मन में दुख पैदा हो गया। अरे बच्चे चले गए छोटे तीनों तीनों दुख। हे विदाता, पहले तो तुम हमको बहुत अच्छी निधि देते हो और फिर तुम छीन लेते हो, तुमको दया नहीं आती है। भगवान के चले जाने के बाद सब नर नारी बहुत दुखी होते हैं और विधाता को दोष देते हैं और आपस में बात करते हैं। सुनती हो सखी, क्या विधाता ने इस संसार में कोई अच्छा काम किया क्या? विधाता ने जितने काम किए उल्टे उल्टे किए। विधाता के ऊपर कोई अंकुश तो लगाने वाला है नहीं, अति उच्छृंखल हो गया। सबसे पहले देखो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा के अंदर घटने बढ़ने का रोग लगा दिया। चंद्रमा जैसा भी राहु के द्वारा पकड़ में आने वाला बना दिया। कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया। समुद्र को देखो खारा बना दिया। क्या फायदा हुआ उस विधाता से पूछो। आज समुद्र का पानी मीठा होता तो कितना बढ़िया होता, पर समुद्र का पानी खारा बनाया, क्या फायदा हुआ। उसी विधाता ने इन छोटे छोटे राजकुमारों को जंगल में भेज दिया। यदि इनको जंगल में भेज दिया तो ये संसार के भोग पदार्थ इतने महल क्यों बनाए? देखो क्या है, सरलता की और प्रेम की बात है। बिचारे बिना जूतियों के जा रहे हैं तो ये रथ और घोड़े और हाथी क्यों बनाए? ये घास फूस की शैयाओं पर सोते हैं तो अच्छे अच्छे पलंग क्यों बनाए? वृक्षों के नीचे ये रहते हैं तो एकदम सफेद चमकने वाले महल बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसे सुकोमल शरीर वाले ऋषि मुनियों का वस्त्र पहन करके जटा धारण करके वन में भेज दिए गए तो ये तरह तरह के आभूषण क्यों बनाए? खाने पीने के लिए इनको कंदमूल फल मिलता है तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिष्ठान ये क्यों बनाए? ऐसी माइयां बोलती हैं तो दूसरी माई बोलती है, ए सखी, हम तो आज एक बात नहीं समझे। क्या समझी? देखो ये तीनों के तीनों है ना, ये विधाता के बनाए हुए नहीं है, ये अपने आप ही प्रकट हो गए। अब विधाता ने देखा कि भाई ये अपने आप कहां से आ टपके, तब विधाता इनकी नकल करने लगा। तो नकल करने लगा तो इनकी नकल बड़ी नहीं, इन जैसा पुरुष, इन जैसी इस राजकुमारी जैसी स्त्री दोनों ही नहीं बने। 14 भवन में वो खोज आया, फिर भी ऐसा उसको स्त्री पुरुष नहीं मिले, और उसका कोई परिश्रम काम नहीं आया। तब उसको ईर्ष्या हो गई कि अरे सब दुनिया देखेगी कि ये अपने आप ही बने, क्या करे। तो तय ईर्ष्या बन अनिदुराय, उनको जंगल में भेज दिया, कोई देखे नहीं, नहीं तो मेरी हल्की लगेगी। एक कहती है देखो जी, दुनिया में तो तरह तरह की बातें बनाते रहो, अपने को तो वो काम लेना चाहिए ना कि जिससे अपने को विशेष लाभ होता हो, वो बात करो। विशेष बात तो इसमें यही है कि इनको वन में भेज दिया तो हम धन्य हो गई कि नहीं। जो इनको देख रहे हैं, जो देखेंगे, वो सब के सब धन्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा किया इनको वन में भेजा, यदि वन में नहीं भेजते तो हम लोगों के तो इनके दर्शन नहीं होते। ऐसी माये बाये आपस में बात कर रही है। वो बात करती करती इतनी विकल हो जाती है, वो एकदम यूं मुंह लटक जाता है, उदास हो जाती है, जैसे संध्या पड़ते ही चकवी उदास हो जाती है। चकवी को चांदनी नहीं सुहाती, रात नहीं सुहाती, चकवा दिन में ठीक रहता है। ऐसी स्त्रियों की दशा हो गई, उनके मन में बार बार बात आती है, इतने कोमल चरण और ऐसा ये मार्ग। कोमल चरणों से जो अरुणारे एकदम लाल लाल चरण है, हमको तो सखी हमारे हृदय में भी रखने में जरा कठिनता होती है, हमारा हृदय कठोर है और उनके चरण कोमल है। हे विधाता, ऐसे कोमल चरण वालों को आपने वन दिया है तो ये मार्ग के ऊपर फूल क्यों नहीं पहले बरसा दिए। आज यदि विधाता हमको कहे कि भाई तुम कोई हमसे वरदान मांगो, तो हम उनसे यही वरदान मांगती कि ये हमारी आंखों के अंदर रहने चाहिए। जो स्त्री पुरुष दर्शन नहीं किए, उनको जाकर लोग बोलते हैं अरे क्या कर रही हो सखी, ये घर के काम धंधे तो करती आई और करते ही रहोगे, दौड़ के जाओ ना। तीन बड़े दिव्य पुरुष आए हैं, दो तो पुरुष एक स्त्री, हाँ ऐसी क्या, अरे क्या करें सखी, अब तो कुछ संसार में दिखता ही नहीं है। तो जो सामर्थ्यवान थे वो तो दौड़ दौड़ के जाया है, देखे आए, अरे सखी बड़ा अच्छा किया तुमने बोल दिया, अरे तुम तो बहुत ही अच्छी हो, हम तो वास्तव में आंखों का फल आज ही प्राप्त किए। अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछिताय, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहां जह जाय। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे और एकदम बुढ़े आदमी, ये तो बेचारे सुन सुन करके हाथ मल के रह रहे, हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, क्या करें। फिर भी जितना हो वो तो गए तो सही, जहां जहां राम गए वहां वहां की जगह को देखा। इधर राम जी महाराज गांव गांव में गए तो हर गांव में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। गांव में सब समाचार एक साथ मिल गया कि दशरथ ने और केकई ने अच्छा नहीं किया। दोनों में से कोई एक भी बुद्धिमानी से काम ले लेता तो आज इनको ये कष्ट नहीं पाना पड़ता। पर दोनों की बुद्धि ऐसे कैसे नष्ट हो गई? केकई ने वरदान मांगते समय यदि ध्यान नहीं रखा तो राजा को अपने हिसाब से वरदान देना चाहिए था। यदि राजा ने केकई को वरदान दिए तो केकई को और ढंग से वरदान मांगना चाहिए था। यह ऐसे कैसे हो गया? दोनों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? एक ने कहा कि देखो भाई, अपने ज्यादा कुछ जानते थोड़े हैं कि उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कैसे हुआ, पर हुआ जो बड़ा अच्छा हुआ। क्योंकि संसार में जो होता है वो कभी खराब होता ही नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है। और जो होता है वो सबको सदा प्रिय लगता नहीं, किसी को कैसा लगता है, किसी को कैसा लगता है। अपने लोग राजा रानी को दोष देवे इसकी बजाय अपने लोगों को तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि बिना तपस्या किए, बिना योग साधन जुटाए आज इनके दर्शन हो गए। बताओ, फिर भी लोग लुगाइयां आपस में बात करती हैं कि भाई आखिर तो ये माँ बाप ऐसे कैसे हो सकते हैं? पर ओहो, इनके पिता माता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है, जिन्होंने इनको गोद में खिलाया है, जिन्होंने इनको प्यार दिया है, स्नेह दिया है। जिस नगर में ये रहते थे वो नगर बड़ा धन्य है। वो गांव वाले कितने अच्छे हैं जो इनका दर्शन करते हैं। वो देश कितना पवित्र है जहां इनके चरण रखे जाते हैं। वो पर्वत कितना अच्छा, जंगल कितना अच्छा, वो सारी जगह पवित्र हो गई। अरे सखी, लोग तो कहते हैं कि विधाता ने अच्छा नहीं किया। हम कहते हैं विधाता जैसा कोई अच्छा है ही नहीं। इनको बना करके विधाता को कितना सुख मिला होगा। तब उस विधाता ने देखा कि ये तीनों तो केवल मेरे सुख के लिए ही नहीं है, चलो इनको दशरथ जी और केके के वहां भेजो, तो उनको सुख दिया। फिर विधाता ने विचार किया कि नहीं नहीं, ये केवल दशरथ और केके कौशल्या को आनंद देने के लिए नहीं आए, जाओ हर गांव वालों को सुखी करो। तो विधाता ने यहां भेज दिया। अब जहां जहां जाएंगे सब लोग सुखी हो जाएंगे। विधाता ने तो बड़ा अच्छा किया। सुख पायौ विरंचि रचिते ही जे जेहिते सब भांति सनेही। अपने को तो सुलटा देखना चाहिए। देखो, मनुष्य को विचार सकारात्मक माने कोई भी परिस्थिति हो उसमें अनुकूलता क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें लाभ क्या है, वो लाभ देखना चाहिए। जैसे व्यापारी आदमी होता है वो ये नहीं देखता कि मैं हीरा खरीद रहा हूं कि मैं कोयला खरीद रहा हूं, ये नहीं देखता हूं। देखता है कि हीरा कितने का है कि साहब ये 10 करोड़ का है। तो 10 करोड़ का हीरा है लेकिन मैं इसको बेचूंगा तो बेचने पर ये कितने करोड़ का होगा ये मुझे देखना है कि साहब 10 करोड़ में बिक रहा है। बाजार में भाव, बाजार भाव तो अभी डाउन है साहब, इतने नहीं मिलेंगे। तो कितना मिलेगा जी? अभी ये 10 करोड़ का है तो नगद लेना चाहोगे तो 8 करोड़ में, फिर 2 करोड़ का घाटा है, हम नहीं लेते। अच्छा भाई, ये कोयला है, ये कोयला कि साहब ये 1 करोड़ का ठेका देते हैं। अच्छा, इसमें कमाई कितनी हो जाएगी? साल भर में आपके 2 करोड़ की कमाई हो जाएगी। तो हाँ, कोयले का, ये कोयला काम कर लेते हैं। हीरे को छोड़ देंगे, कोयले का काम करेंगे। अब इसको, इस हीरे को जो खरीदेगा वो कहेगा कि भाई व्यापार तो मैंने हीरे का किया पर 2 करोड़ का घाटा लग गया, और व्यापार मैंने कोयले का किया पर 1 करोड़ का फायदा हो गया। तो व्यापारी आदमी ये नहीं देखता कि ये हीरा है कि कोयला है, वो लाभ को देखता है। ऐसे ही हम लोगों को भी हर परिस्थिति में लाभ क्या है वो देखना चाहिए, परिस्थिति का बाहरी रूप रंग नहीं देखना चाहिए। बाहरी की परिस्थिति तो अलग अलग रंग की आती है, कोई अच्छी भी दिखती है, बुरी भी दिखती है। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई, सारे जंगल में और रस्तों में राम लक्ष्मण की कथा चल रही थी। भगवान सबसे प्रेम से मिले, प्रेम से चलते चलते भगवान आगे गए। अब यहां आप थोड़ा सा देखना, देखो आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सी सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण है, बीच में सीता जी, यूं चल रहे हैं। ध्यान देना ये क्रम आगे उलट भी देंगे अभी थोड़ी देर में। ये कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं? जैसे ब्रह्म और जीव, ब्रह्म तो है हमारे भगवान राम, जीव है लक्ष्मण और माया है सीता। अब चलते हैं ना, तो आगे राम है तो थोड़े से सीता जी यूं चलेंगी, राम जी यूं के यूं चरण जाते हैं तो सीता जी क्या करती हैं कि राम जी के चरणों के आगे अपना यूं चरण रखती, उनके चरणों पर चरण नहीं रखती, चले तो यूं चरण रहते हैं ना, तो सीता जी यूं चरण रखती है, जो खाली जगह होती है वहां चरण रखती है। और लक्ष्मण जी उनकी सीध में, लक्ष्मण जी थोड़ा उनको दाएं रख करके चलते हैं कि न तो अब यहां राम जी का चरण आ गया, यहां सीता जी का गया, यहां राम जी का, यहां राम का, नहीं मुझे इनके यूं चलना है। ऐसे चल रहे हैं। ये एक उपमा दी है कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया होती है। अब ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया है उसमें जीव कैसे चलता है और ब्रह्म कैसे रहता है और माया कैसे रहती है, तो लक्ष्मण जी यहां जीव बताए गए। पर जीव भी 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है। माने जो विषयों में बंधा हुआ रहता है वो बद्ध जीव, एक मुक्त होता है। हमारे लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि जो मुक्त जीव है वो माया को और ब्रह्म को दोनों को अपदायिनी और रख करके चल रहे हैं। आगे ब्रह्म है, ब्रह्म निर्विकार, ब्रह्म ब्रह्म के पीछे माया रहती है। ब्रह्म श्रेष्ठ है और ब्रह्म के पीछे ब्रह्म की शक्ति से माया ब्रह्म के साथ रहती है, ब्रह्म की शक्ति माया है। एक तरफ तो ये बताया, अब चलो बहुरी क्या हूं, अब मैं आपको दूसरी और बताता हूं कि जनु मधु मदन मध्य रति लसई, जैसे वसंत और कामदेव के बीच में रति रहती है। अब देखो रति है ये कामदेव की पत्नी है, तो आगे कामदेव पीछे रति और फिर वसंत रहना चाहिए, पर नहीं, आगे है वसंत पीछे है रति और फिर है कामदेव। ये इस प्रकार की बात कही, तो ये क्रम क्यों पलटा? राम जी का क्रम था आगे राम, फिर पत्नी और फिर भाई छोटा, ऐसे ही कहना चाहिए। और फिर उपमा दी ब्रह्म माया और जीव, बिल्कुल ठीक है। अब कहना चाहिए कि कामदेव रति और वसंत, लेकिन नहीं, वसंत रति और कामदेव, ऐसे ही उपमा दी। तब बताया कि बहुरी कहूं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी की जो बात कह रहा हूँ वो मैं जिस प्रकार की कह रहा हूँ वो बात दूसरी है, ये मैं कह रहा हूँ ये दूसरी है। और जगह देखोगे तो वे सब रति के अंदर कामदेव है, वो मुग्ध रहता है, इसलिए वो रति को पीछे छोड़ने की उसमें ताकत नहीं है, रति से वो विमुख नहीं है, और भगवान सीता से विमुख है। और कह उपमा बहुरी कहूं जी मोही, और मैं आपको उपमा देकर के कहता हूं कि जनु बुद्ध बीच रोहिणी सोई, आगे तो है बुद्ध और बीच में रोहिणी और पीछे है चंद्रमा। रोहिणी है ये चंद्रमा की पत्नी है, चंद्रमा है वो पीछे है, और बुद्ध है वो चंद्रमा का लड़का है, छोटा है, तो वो तो है आगे और पीछे रोहिणी और फिर चंद्रमा। यक्ष के 60 कन्याएं थी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, भागवत में आता है। उसमें एक रोहिणी के साथ चंद्रमा ने विशेष प्रेम किया, तो उनको शाप दे दिया यक्ष ने, दक्ष ने कहा कि जाओ तुम्हारे राज यक्ष में तुम्हारी टीबी हो जाएगी। तो उसकी टीबी हो गई। टीबी होने का क्या लक्षण? कि वो घटता है बढ़ता है। जिसके टीबी होती है वो बीमार होता है, तब उसका शरीर यूं हो जाता है, फिर स्वस्थ होने लगता है, यूं हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है वो टीबी वाला है। तो ये चंद्रमा रोहिणी के पीछे है, इतना रोहिणी में आसक्त, वो रोहिणी का अनुगामी है, बुद्ध है वो आगे है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम ये एक ऐसे हैं जो सीता को पीछे करके चलते हैं, और लक्ष्मण एक ऐसे हैं कि जो इनको दायां करके चल रहे हैं। बाकी जितने चाहे कामदेव हो चाहे चंद्रमा हो, वो रति के और रोहिणी के पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान की वो झांकी याद रखनी चाहिए, इसलिए बार बार कहते हैं कि वो छवि बहु छवि, बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, उपमा बहुरी कहूं जिए जोही। ये बात इसलिए कहते हैं कि वास्तव में हमको भगवान की इस छवि का ध्यान करना चाहिए। आगे राम है, पीछे सीता है, और फिर लक्ष्मण जी हैं। राम जी की माया से विमुखता बतानी है। सी राम पद अंक दुबराए, लखन चलई मगु दाहिन लाए, राम लखन सी प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि का। इतना प्रेम है राम में, लक्ष्मण जी में और सीता जी में प्रेम है कि उस प्रेम को हम कह नहीं सकते हैं। माने राम जी वो सीता जी का ध्यान रखते हैं, कहीं थक तो नहीं गई है। लक्ष्मण जी हैं जो दोनों का ध्यान रखते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेना चलेगी ना रावण की तरफ चलने के लिए, तो बहुत से सैनिक जो उल्टे चल रहे थे वहां उल्टे, क्यों क्या पता कोई शत्रु आ जाए, तो राम जी की यूं सेना चले वो पीछे यूं चल रहे थे, उनकी यूं लगातार ही, और इधर की तरफ भी यूं चल रहे थे गोलाकार सेना, इस सेना से यूं, और आगे वो थे, बीच में राम जी महाराज थे, लक्ष्मण जी थे, सुग्रीव थे, हनुमान जी के सिर या कंधे पर राम जी बैठे हुए, अंगद के कंधे पर लक्ष्मण जी बैठे हुए, अब सेना का निरीक्षण कर रहे थे। इतना होते हुए भी सब यूं कि भाई पीछे भी एक सेना जो पीछे चलने में कोई दिक्कत न आए, उनके लिए संसार रूपी मार्ग जो कि बड़ा कठिन है बड़ा सुगम बन गया, आनंदमय बन गया। अरे संसार से कल्याण करना कोई कठिन नहीं है। क्या गोस्वामी जी ने कही है कि देखो ये इतनी बढ़िया छवि है कि अजहु जास उर सपनेउ काऊ। आज भी यदि कोई आदमी सपने में भी इस छवि को देखता है तो राम धाम पत पाई सोई, वो राम जी के धाम को प्राप्त होता है। ये छवियों वनवासी राम जी की छवि। अजब जासुर सपने उकाऊ बसव लखन सिए राम बटाऊ राम धाम पत पाइये सोई जो पत पाव कबऊ मुनि कोई। ऋषि मुनियों को तो जाने कब मिलता है, लेकिन आज सपने में भी जो व्यक्ति भगवान को इस वनवासी वेश में देखता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। बताओ इस वेश को देखने का कितना बड़ा महात्म्य तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। इस वेश का ध्यान करना चाहिए, भगवान ने तो ये वनवास लिया ही इसीलिए था, लोगों का कल्याण करने, लोगों में वैराग्य पैदा करने के लिए। राम जी महाराज ने देखा कि सीता जी थक गई है, तब वहां पर पास में एक बट का पेड़ था, वहां पर पहुंच गए, ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर रात्रि को वहां विश्राम किया। प्रातःकाल वहां से रवाना हुए और वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में आ गए। अब दा वाल्मीकि जी का आश्रम देखो, कई आश्रमों में जाएंगे लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम में जो चर्चा होगी वो चर्चा कहीं नहीं होगी, ऐसी विचित्र चर्चा, क्योंकि वाल्मीकि जी महाराज जी तुलसीदास जी हुए ऐसा लोग मानते हैं। तो वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि वास। राम जी ने कितना सुंदर मनोरम आश्रम है, कैसा सुंदर इधर पर्वत है, कैसा बढ़िया जंगल है, और यहाँ तालाबों के अंदर कैसे बढ़िया कमल खिले हुए हैं, वृक्ष कैसे हरे हरे हवाओं में झूमते हैं, भौरे हैं वो गुंजन कर रहे हैं, वो फूलों के ऊपर बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, पशु पक्षियों का कोलाहल बहुत सुंदर है, और इतना ही नहीं इनका बर्ताव देखिए, आपस में बैर रखने वाले पास पास में बैठे हैं, चूहा बिल्ली पास पास में, कुत्ता बिल्ली पास पास में, और सांप नेवला पास पास में, सब ये पास पास में बैठे हैं। बहुत सुंदर आश्रम को देखा तो राम जी महाराज आश्रम में गए, वाल्मीकि जी को पता चला, आइए राम आओ आओ, ऐसे आगे बढ़े। भगवान ने उनको प्रणाम किया, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया, और देखो तुलसीदास जी महाराज क्या क्या कहते हैं, देख ही राम छवि नयन जुड़ाने। वनवासी राम जी को देखते ही रह गए वाल्मीकि जी महाराज, क्या सुंदर छवि है। फिर अपने आश्रम में लाए, अतिथि सत्कार किया, कंदमूल फल सामने रखे, वाल्मीकि जी महाराज को बहुत आनंद आ रहा है। फिर राम जी महाराज ने उनको हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सारा संसार आपके लिए बोर के समान है, एक बोर होता है ना गोड़ हाथ में, उस बोर को देखने में क्या कठिनाई, ऐसे सारे संसार का ज्ञान आपके ज्ञान के सामने बहुत छोटा है, संसार को खूब अच्छी तरह से जानते हो, आपको तो पता ही है हमारे घर में क्या हुआ, बड़ी अच्छी बात हुई, आपके दर्शन हो गए, अस कही प्रभु सब कथा बखानी। देखो कथा कहने में भी क्या है, भगवान ने बहुत आनंद के साथ कहा कि आज देखो मुझे मेरे पर कैसी कृपा हुई है पिता दशरथ जी की और माँ कैकेयी जी की, कि आपके दर्शन मिल गए, यदि वो वरदान नहीं मांगते तो आपके दर्शन नहीं होते। और तो और, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव मो कऊ दरस तुमार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी का वचन यूं ही रह जाता साहब, क्या पता पिताजी कब चले जाते संसार से, कोई पता नहीं है। पिता ने उनको दो वरदान दिए थे, वो दो वरदान यदि पिताजी पूरा किए बिना चले जाते तो पिताजी की दोबारा यहां पर जन्म लेने की नौबत आ जाती। देखो भगवान के इतने प्रेमी थे दशरथ जी महाराज, तो भी भगवान कहते हैं क्या पता इनको नौबत आ जाती। अपने वचन किसी को दे तो उसको पूरा करना चाहिए। तो पिताजी के तो वचन पूरे हो जाएंगे और माता का हित हो जाएगा। माता का हित क्या हुआ कि माता ने तो सुरक्षित रखे थे वरदान, माता ने वरदान सुरक्षित रखे और माता मांगती नहीं तो माता का भी हित नहीं होता, माता को भी दोबारा जन्म लेना पड़ता उन वचनों के लिए। और फिर मेरा धर्मात्मा भाई राज करे तो भाई तुम तो घाटे में रह गए ना कि महाराज मोकों दर्श तुम्हार प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए महाराज, कितना सबको फायदा हो गया, पिताजी को भी फायदा हो गया, माँ को भी फायदा हो गया, भरत को भी लाभ हो गया, मुझे तो परम लाभ मिल गया। सो सब मम पुण्य प्रभाव, ये कोई मेरा ऐसा कोई पुण्याई का काम था कि देखो मेरे लिए कितनी बढ़िया बात हो गई, मेरे ऐसे पिताजी जिनके वचन पूरे हो गए, ऐसे माताजी जिनका हित हो गया, और मेरा प्यारा भाई धर्म पुरुष भाई उसको राजगद्दी मिले और मैं आप जैसे संतों के पास बैठूं, कितनी बढ़िया बात हुई। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढने वाला होता है वो भगवान जैसे स्वभाव का होता है। दूसरे तो कहेंगे देखो राम को, देखो राजगद्दी मिलने वाली थी और कितना दुख मिला, राम जी कहता रहे मेरा तो सुख ही अब मिला है। परिस्थितियों में सुख और दुख नहीं होता, परिस्थितियों के समझने में सुख दुख होता है। अच्छी परिस्थिति होती है सुखदाई, उसमें भी लोग दुख बना लेते हैं, और जो दुखदाई परिस्थिति होती है उसमें भी लोग सुख मान लेते हैं। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, आप जो आपके चरण के दर्शन हो गए ना हमें बहुत आनंद मिला। अब महाराज एक कृपा कीजिए कि बोलो अब मुझे एक ऐसी जगह बताओ, ऐसी ठाव दिखाओ, ऐसी जगह बताओ कि जहां किसी ऋषि मुनि को कोई उद्वेग न होवे, जहां ऋषि मुनि तपस्वी लोगों के मन में दुख पैदा हो उद्वेग पैदा हो। महाराज वो तो राजा है, वो चाहे कोई, वो तो नरक में जाते हैं सीधे अग्नि में जलते हैं वे वहां। फिर महाराज हमारे कारण से किसी को उद्वेग हो जाए ऐसा तो हम चाहते नहीं है। जो ब्राह्मण को दुख देता है वो महाराज वो कुल समेत करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो ब्राह्मण के शाप से, ब्राह्मण के दुख से वो राजा दुखी हो रहता है वो। इसलिए ऐसी जगह बताओ किसी को तकलीफ ना हो। राम जी की वाणी सुनकर के ऋषि मुस्कुराते रहे वाल्मीकि जी, वाह राम तुम रघुकुल के ध्वजा हो, ध्वजा। देखो किसी आदमी का मकान नहीं दिखे लेकिन ऊपर ध्वजा होती है, अरे वो मकान है साहब, वो मकान है, वो राम द्वारा है साहब, राम धाम ऊपर ध्वजा। हाँ ये मकान नहीं दिखा है, ध्वजा दिखती है, ध्वजा ध्वजा सबसे ऊंची होती है। आज तक रघुकुल के अंदर तुमसे श्रेष्ठ कोई राजा नहीं हुआ, तुम ध्वजा हो ध्वजा। तुमने वेदों की मर्यादा का पालन करने के लिए अवतार लिया है, और सीता है ना ये तुम्हारी माया है, ये माया ही संसार को बनाती है, पालती है, पोषती है और इसका संहार करती है, सब ये जानकी जी का काम है। और ये जो लक्ष्मण जी हैं ये स्वयं शेषनाग हैं, अपने हजारों फणों के ऊपर पृथ्वी को धारण किए रखते हैं, आप तीनों देवताओं के काम बनाने के लिए आए हैं, निशाचरों का नाश करने के लिए आए हैं। वारा ये तो खैर आपकी बात हुई, अब आपकी और मेरी थोड़ी पर्सनल टॉकिंग हो रही है, पर्सनल बात करते हैं आपसे। क्या राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथय पार नेति नेति नित निगम कह। देखो राम तुम्हारा स्वरूप कितना दिव्य है, कितना दिव्य है। देखो यहां कोई दूसरे को नहीं लिया है, सीता जी को लक्ष्मण जी को किसी को नहीं लेकर केवल बोलते हैं हे राम तुम्हारा स्वरूप कितना दिव्य है। मन वाणी से कहा नहीं जा सकता है, तुम्हारी कथाओं का भी कोई पार नहीं है। वेद भी आपका निरूपण कर नहीं सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं क्या ये भगवान है कि ना, 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 नहीं नहीं बोलते हो कि ये भगवान है, ऐसा वेद बता ही नहीं सकते बेचारे। तुम सारे संसार को देखते हो, तुम ब्रह्मा को नचाने वाले, तुम विष्णु को नचाने वाले, तुम शंकर जी को नचाने वाले हो। अब देखो यहां लोग कहेंगे कि विष्णु ही तो राम बने थे, यहां पर विष्णु को नचाने वाले और यही विष्णु, दोनों कैसे हो गए? ये महाविष्णु है हमारे राम, महाविष्णु राम और कृष्ण है, ये महाविष्णु है, महाविष्णु जो कभी कभी अवतार लेते हैं वो महाविष्णु, ये भक्तों की मान्यता है, प्रमाण भी आ गया। मनु शत्रुपा के समय में ही बताया और भागवत जी के अंदर आता है ना कि भगवान जिस समय अर्जुन को ले जाते हैं महाविष्णु के समय, अर्जुन देख दोनों की आकृति एक, दोनों का बोलने का ढंग एक, अरे कृष्ण सब कुछ तुम ही हो। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते, और तो कौन जानेगा, आपको जानना बड़ा मुश्किल है। देखो लोग देखते हैं कि पहले हम भगवान को जाने फिर बाद में भगवान को माने। हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको जान ही नहीं सकता कोई, कैसे जानेगा बताओ। आपको जानने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। कोई सूर्य की तरफ यूं देख सकता है क्या एक घंटे तक यूं? इसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। सूर्य को यूं देखते देखते आंखें खराब हो जाती है, फिर बंद करते हैं कहते फिर देखते हैं, इसकी भी एक साधना होती है। और सूर्य संयमात भुवन कोशक ज्ञानम, एक सूर्य के ऊपर दृष्टि डालते रहे पूरे भुवन कोश का ज्ञान होता है, परंतु उसको बार बार देख आंखें चिंधिया जाती है। क्यों? आंख के अंदर जो लाइट है ना, उससे न जाने कितनी गुणी ज्यादा लाइट सूर्य में है। तो जो आंख की लाइट सूर्य की लाइट से बहुत छोटी है, वो सूर्य को कैसे पहचानेगी? ऐसे ही हम लोगों के पास जो जानने की ताकत है वो बहुत छोटी है, वो आपको कैसे जानेगी महाराज? आप तो कृपा करते हो कि आपको वही जान सकता है जिसको आप जना देते हो। ले ले ऐसे नहीं, ऐसे देख। अर्जुन ने कहा मैं यूं देखना चाहता हूं। अरे नहीं, तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं, अब देख। ओहो अब इतना देखा, यूं देखो अनंत मुख है, अनंत हाथ हस्त है, अनंत ये सब रूप देखा। ओ महाराज भीष्म पितामह कह रहे हो सबको मरते हुए देखा है, और क्या हुआ है? तो सो जानई जे देव जाने जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। एक बार जो आपको स्वीकार कर लिया, देख लिया, जान लिया, फिर वो और किसी का नहीं होता, वो आपका हो ही जाता है। आप भगत के हृदय में रहने वाले चंदन हो, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाले हो, चिदानंदमय। खास बात है प्रभु, आपकी जो देह है वो हम लोगों के समान नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंदमय। आकृति तो हमारी जैसी, और बना हुआ तत्व कुछ और ही है, और ही तत्व से बना हुआ। देखो कोई हमारी है जैसी प्रतिमा बना दे, कोई कारीगर हो ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही मुंह, एकदम ऐसा, और अंदर जो है ना हमारी टेप रिकॉर्ड, उस बनाओ मूर्ति अंदर टेप रिकॉर्ड रख दे, बोलते हैं तो टेप रिकॉर्ड होता है, वो टेप रिकॉर्ड यहां रख दे और पीसी से चला दे, दूर से आदमी देखेगा कहेगा अरे ये तो वही आदमी है जो बोलता है, वो बोलता है, लगता तो ऐसा ही है, परंतु वास्तव में आकर के देखे तो वैसा थोड़ा ही है, लगता है एकदम मेरी जैसी शक्ल का लगेगा वो, परंतु मैं अलग हूं वो अलग है, मैं कमरे में बैठा हूं वो यहां पर बैठा करके मिट्टी का बना करके टेप रिकॉर्ड लग दो, देखा सा पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण की कथा हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है, वो दिखता दिखता है नहीं, आगे जाके बोलो देखे, कोई हमसे बोले तो थोड़ी बोलेंगे, जैसे अभी मैं बोल सकता हूँ ऐसी मेरी कोई प्लास्टिक की रबड़ की मूर्ति बना करके थोड़ी बोल सकता हूँ। ऐसे भगवान, भगवान का जो श्री विग्रह है वो दिखता तो हमारे समान ही आंखें, हमारे समान ही नाक, हमारे समान ही होठ, हमारे समान चिबुक, हमारे समान गर्दन, दिखता ठीक वैसे ही है, लेकिन वहां जाकर के देखोगे तो और ही मिलेगा ही नहीं। वो भगवान ऐसे मिलेंगे नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, हम तो छोटे से बड़े होते हैं और शरीर के अंदर भी विकार पैदा होते हैं, मन में भी विकार पैदा होते हैं, हम तो विकृति ही विकृत है, लेकिन भगवान के यहाँ शरीर में विकार नहीं, जन्म में विकार नहीं, भाव में विकार नहीं, भगवान निर्विकार रहते हैं, निर्विकार। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा काम ऐसा क्यों किया, अरे उनमें कोई बुद्धि में विकार थोड़ा ही, तुम उनमें विकार देखना चाहते हो। भगवान ने सीता जी का त्याग क्यों किया जी, जब सीता जी निर्दोष थी, सीता जी का कोई दोष ही नहीं था, ऐसी बिचारी अबला का, और इतने वर्षों के बाद फिर त्याग कर दिया, ये कहां के न्याय की बात है, अन्याय किया। को पूछो कि सीता जी को निकाल दिया, ये बात तुम कहां से बोलते हो, अरे क्या बात करते हो, आपके रामायण में लिखा हुआ है, आपके रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा, अध्यात्म रामायण में लिखा है, क्यों हमको ऐसा तुम भरमाते हो, लिखा नहीं है क्या। वाल्मीकि रामायण में ये भी तो लिखा है कि वो साक्षात भगवान है, आपने आधी बात पढ़ी आधी बात नहीं पढ़ी, ऐसे आधी बात को लेकर के बैठ जाने में आपका क्या अधिकार है बताओ। जिस शास्त्र को आप देखते हो उसका पूरा अंश पढ़ना चाहिए, पूरा आगे पीछे का सब, यदि वो पूरा अंश नहीं पढ़ते हैं तो भाई वो शास्त्र का, शास्त्र के प्रति न्याय नहीं करते हैं। भगवान ने सीता जी को वन में भेजा ये बताने के लिए कि लोग ऐसा न मान लें कि राम और मनुष्यों की तरह थे। सीता जी ने खुद ने कहा है कि मुझे तो मेरे जन्म कुंडली में लिखा है कि अरे सीते तुम जंगल में ज्यादा रहोगी और राजमहलों में तो बहुत कम रहोगी, ये वाल्मीकि रामायण में आया है। देखो शास्त्र के अंदर जो बातें आती हैं उनको लोग देख अपने हित की बात देखते हैं। जब अग्नि परीक्षा ले ली फिर सीता जी का क्यों त्याग किया, सीता जी का राम जी कभी त्याग कर ही नहीं सकते हैं, त्याग की लीला की है, त्याग थोड़ी किया है, आदर्श उपस्थित करने के लिए राम जी ने आदर्श उपस्थित किया कि त्याग से ही आदर्श होता है, निर्दोष थी फिर त्याग से कौन सा आदर्श होता है, कि त्याग से ही आदर्श होता है कि भाई राम जी पर ये कोई नहीं कह सकते कि राम जी ने सीता जी को रावण के वहां रख करके अपने यहां रख लिया तो सीता जी का राम जी के साथ में प्रेम नहीं था, प्रेम उल्टा ज्यादा हुआ। त्याग करने के बाद आप देखो सीता जी ने क्या किया, त्याग करने के बाद सीता जी ने राम जी की भक्ति विशेषता से की। राम जी यदि सीता जी का त्याग नहीं करते तो सीता जी जमीन में नहीं समाती। अब जिस ढंग से प्रकट हुई उसी ढंग से उनको अंदर जाना था जमीन में, उसका त्याग करने से ही ऐसा वाने तो नहीं होता। बहुत कारण है, बहुत कारण है, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसी लीला होती है, उसमें हमारा क्यों लगाना कोई अर्थ नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं में विकार नहीं होता। वो क्रोध में सीता को नहीं भेजे हैं और उन्होंने किसी और कारण से सीता को नहीं रखा है, किसी कारण से न तो रखा न किसी कारण से उन्होंने निकाला है, लीला की लीला। तो विगत विकार जान अधिकारी, आप जो शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं के अंदर मूर्ख आदमी तो मोहित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, और जो समझदार पुरुष होते हैं उसमें आनंद मनाते हैं। एक ने प्रश्न किया, कि राम और सीता ने भी तो क्या बताया, अच्छी बात तो नहीं कही, पर कह दी उसने कि दोनों का पहले पुष्प वाटिका में प्रेम हुआ, प्रेम होने का ये हुआ। अरे उनका प्रेम, उनका प्रेम दैहिक प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं था। शरीर हमारे जैसा है ही नहीं, न सीता जी का है न राम जी का है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आदमी जैसे अपना हो रहा वैसे दूसरे में देखता है। नर्तन धरे उ संत सुर काजा, के भगवान का और सीता जी का आकर्षण हुआ, तो आकर्षण हुआ तो फिर भगवान को धनुष क्यों तोड़ना पड़ा, सीता जी को लेके भग जाते उस समय सब चुप हो जाते। अरे आकर्षण नहीं, गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि प्रीति पुरातन लखई न कोई, इनका तो सदा से प्रेम है, कभी इनका वियोग है ही नहीं। प्रीति पुरातन लखई न कोई, कोई जानता नहीं है। नहीं तो बताओ, राम जी का सीता जी में प्रेम था, यदि वो अनुचित प्रेम होता तो राम जी जाकर क्यों बोल देते, लक्ष्मण को क्यों बोल दिए और गुरु जी को क्यों बोल दिया कि साहब मेरा सीता जी में प्रेम हो गया, कैसे बोलते। सीता जी जाकर पार्वती से कैसे बोलती कि साहब मेरे तो यही वर मिलना चाहिए। पवित्र प्रेम है, निश्चल प्रेम है, ये दैहिक प्रेम नहीं है, ये वासनिक प्रेम नहीं है, ये वैकारिक प्रेम नहीं है, जिस प्रेम तक हम पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा दिव्य प्रेम है वो। तो जड़ मोह है बुद्ध होई सुखारे। रासलीला में भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने लगे तो परीक्षित जी घबरा गए। परीक्षित जी ने कहा कि ये क्या है, ये काय का प्रेम है। सुखदेव जी महाराज ने फिर उनको कहा कि परीक्षित कथा सुनो, ये पहले प्रेम की पूरी बात सुनो, तब जाकर के परीक्षित को होश आया। तो प्रेम की लीला होती है भगवान की, वो समझ में नहीं आती है, इतनी उत्कृष्ट प्रेम, क्योंकि वो प्रेम बिचारों ने देखा नहीं। जड़ मोह ही बुद्ध होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, हे राम जो तुम कहते हो और जो करते हो वो सब सत्य है, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। उनको मालूम था कि दशरथ जी मरने वाले हैं, 6 दिन बाद ही वनवास चले जाते। अरे दशरथ जी का राम जी के सामने मरना बिल्कुल गलत होता, राम जी का चला जाना, दशरथ जी के मन में खूब प्रेम बढ़ना और वियोग के अंदर तड़पते तड़पते मरना, ये दशरथ जी के लिए कितनी ऊंची स्थिति है। लोग इनको मालूम था कि 6 दिन में मरेंगे तो फिर गए ही, 5-6 दिन बाद चले जाते। जैसे लौकिक आदमी करते ना, ऐसे राम जी को भी मान लिया लोगों ने, ऐसे ही करें बस, ऐसा नहीं। उनकी दिव्य लीला है, तुम जो कहो करो सोई साचा, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, सब सत्य है। जस काचिए तस नाचिए नाचा, जैसा वातावरण होता है, जैसा वेश होता है, वैसा आप नाच नाचते हैं। जैसा वातावरण, जैसा वेश, जस काचिए तस चाहिए नाचा, वैसा ही नाचना चाहिए। वेश तो वैसा हो नहीं और नाच ना करें तो ठीक नहीं लगता, आप ठीक करते हो। मनुष्य रूप में आए तो मनुष्यों को क्या कैसे करना चाहिए ये आपने बताया है। अब आप मुझसे पूछते हो कि मैं रहूं कहां, तो महाराज मैं आपसे पूछते हुए संकोच करता हूं, आपको तो कोई संकोच हुआ नहीं, मैं पूछूं अब क्या करूं। मेरे ये संकोच है कि जहन हो तह देहु कही, तुम कहां नहीं हो वो जगह आप बता दो, उनमें से मैं बता दूंगा कि हाँ यहां रहो। आपने कहा कि मुझे ठाव दिखाओ, कौन से ठाव दिखाऊं। देखो वही का वही शब्द लिया है हमारे गोस्वामी जी महाराज ने, अस जी जान कहो सोई ठाऊं, तो जहन हो तह देहु कहीं तुम ही दिखाओ ठाऊं। वो ठाऊं शब्द लिया, ये भी ठाऊं शब्द लिया, तुम बताओ साहब वो ठाऊं बता दे, हम आपको ठाऊं। जहां तुम नहीं हो अर्थात तुम तो सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो, लेकिन क्या करें भाई, सर्वव्यापक हो तो है, पर ये तो मैं कहां चला गया, मैं चला गया निर्गुण निराकार में। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुची राम मनमऊ मुस्काने। ये वही मुस्कान आई है जो जनक जी के समय में बाल विश्वामित्र जी ने कहा था, ये इन्हें विलोकित अति अति अनुरागा, इनको देख करके इतना अनुराग होता है, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा, ब्रह्मानंद भी मेरे लिए फीका पड़ता है, ये कोई नृप बालक है या कोई ऋषि मुनियों के पुत्र है कि ये कौन है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, आप सही कहते हो जनक जी, वो सही कहते हो, यूं बोले ना मुस्कुराए। राम जी महाराज ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा है तो मुस्कुराए। मुस्कुराने का अर्थ है कि अभी आपको ये सब बात नहीं कहनी है, नहीं कहनी है। विश्वामित्र जी भी सीधा, दशरथ जी के बेटा है, मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, तुम्हारा निमंत्रण आया था, हम तुम्हारे यहाँ आ गए। अच्छा 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 ठीक है, जनक जी महाराज वो बात वही दफा दफा कर दी। ऐसे ही सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मऊ मुस्काने, नीचे देखने लगे और वाल्मीकि जी की तरफ देख मुस्कुराए। वाल्मीकि हंसी कह बहोरी, अब वाल्मीकि जी भी हंस गए भगवान की हंसी को समझ करके, और कहने लगे कि सुनो राम, अब मैं तुम्हारे रहने की जगह बताता हूँ, अब रहने की जगह बताता हूँ। क्यों जी, ये बीच में इतना ये आपकी हंसी मजाक हुई क्यों? कि देखो खग जाने खग ही की भाषा, समझदार आदमी तो समझदारी में ही बात कर लेते, इतने में हो जाती बात। तो ये उनका इस मुस्कुराहट में कितनी कितनी बातें दोनों ने समझ लिया। अरे सुनो सुनो राम, आपसे दोनों तुम निर्गुण निराकार के बताने लग गए ऋषिवर, मैं सगुण साकार में पूछता हूँ, तो मैं सगुण साकार की बात करता हूँ। क्या कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो इन पूरे, तिनके ही तुम कहूं प्रिय रूरे। जिनके कान समुद्र के समान है, कि जहां कितनी आपकी कथा सुनाऊ भरते ही नहीं है, समुद्र कभी भरता है? नहीं भरता। ऐसे खूब सुनने की इच्छा होती है, सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। और उनके नेत्रों में बसो, उन भक्तों के नेत्रों में बसो जो चातक की तरह हो, देख रहे देखते रहे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ भगवान का भक्त जो कह दे बस अब आपके दर्शनों से तृप्त हो गए। ऐसे निदरई सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। अरे राम राम, क्या हद की है देखो, कि जो सागर के पानी को, समुद्र के पानी को, नदियों के पानी को, झीलों के पानी को भी तिरस्कृत करके केवल आपकी रूप की एक बिंदु की प्यासी है, आपके रूप बिंदु जल होई सुखारी, ऐसा हृदय में जिनके भाव है उनके हृदय में आप निवास करो। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हा जास, मुकता हल गुन गन चुनाई, राम बसौ हियतास। तुम्हारा जो जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारा जो मानस है हृदय है, वो हृदय तो है एकदम मान सरोवर के समान विशाल। तुम्हारा यश, तुम्हारा जो यश है कीर्ति है, वो तो मान सरोवर है। अब मान सरोवर में कौन रहती है? हंसनी रहती है। तो जिस आदमी की जीभ है वो हंसनी बन करके आपके यश को, यश रूपी मान सरोवर में तैरती रहती है, और भूख लगे तो क्या खाए? मुक्ता हल गुनगन चुनई, हंसनी है वो मोती खाती है, हंस भी मोती, हंस हंसनी मोती खाते हैं। तो मुक्ता हल गुनगन चुनई, पानी के अंदर मोती रहे, मोती पानी में ही पैदा होते हैं। ये रामेश्वरम के पास, पुरी के पास, इनके यहाँ कर बहुत से लोग मोती ले लेके बैठे रहते हैं। अब उनमें ठगाई में आ जाते हैं कई लोग, कई लोग नहीं आते हैं, और आते वो समुद्र में सी आते हैं मोती। तो मुक्ता हल गुनगन चुनई, आपके जो गुण है उन गुणों को वो मोतियों के समान चुगते रहते हैं, अपने जीभ से चुगते रहते हैं। ऐसों के हृदय में आप निवास करो। अपने पास जो कुछ वस्तु है वो आपके अर्पण करो। जैसे घर में नया वस्त्र आया, ला करके आपको भेंट किया और फिर कपड़ा पहना, धोती पहनी, चोला पहना, टोपी पहनी, जो पहना पहले आपको निवेदन करके, तो हरदम आप किया ये भगवान का भेंट किया हुआ, भगवान का प्रसाद है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, माला बढ़िया बनाई सोने की, तो पहले भगवान की भेंट कर दी, ये भगवान आप स्वीकार करो, अब आपकी आज्ञा है तो आपका प्रसाद समझ करके मैं स्वीकार करता हूं। भोजन करो तो पहले भगवान के भोग लगाओ, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, जो अपने माता पिता गुरुजन ब्राह्मण इनके चरणों में शीस नवाते हैं, उनके हृदय में आप निवास करो। जो अपने चरणों से तीर्थों में जाते हैं उनके पास आप निवास करो। जो अपने जिह्वा से नित्य निरंतर राम 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 ऐसे बोलते रहते हैं उनके वहां पर आप निवास करो। हरदम आपसे एक ही बात चाहते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारी रति हो जाए, प्रेम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते। सब करी मांगई एक फलू राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊ सिय रघु नंदन दो। सब कर मांगई एक फल राम चरण रति हो, ऐसा राम जी के चरणों में प्रेम हो, ऐसा जो मांगने वाले उनके अंदर आप निवास करो। जहां कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, लोभ नहीं, सबका हित करने वाले हैं, और आपको छोड़कर के जो अपने जीवन में किसी को भी आश्रय नहीं समझते हैं, और जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान, विष से भी भयंकर भारी समझते हैं, अरे दूसरे का धन, दूसरे का हक हम कहां ले लें भाई, नहीं लेते। जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं उनके वहां पर आप निवास करो। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए संकट सहन करते हैं उनके हृदय में आप निवास करो। जो आदमी किसी में भी अवगुण नहीं देखता है और गुण ही गुण ढूंढता है, क्यों, कोई आदमी ऐसा है नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। हर आदमी में देख रहे इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है, मेरे लेने लायक बात क्या है, ऐसे जो विशेषता देखने वाला है उसके हृदय में आप निवास करो। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तरी तुम्हें रहो उरलाई। जो जाति का अभिमान है, न धन का अभिमान, न धर्म का अभिमान, प्रिय परिवार सदन किसी का भी अभिमान नहीं है, केवल आपको लेते हैं, उनके हृदय में आप निवास करो। ऐसे ऐसे सब भवन दिखा करके और अंत में कहा, सुनो अब हम एक आश्रम बताते हैं, हमारे यही रह जाओ ना। कहा आप कहां रहे, ये चित्रकूट गिरी, चित्रकूट गिरी करो निवासो, चित्रकूट के अंदर आप निवास करो। बड़ा सुंदर ये पर्वत है, यहाँ पर हाथी, यहाँ पर मृग पशु पक्षी बहुत रहते हैं। मंदाकिनी नदी है कि जो गंगा जी की एक धारा ही बहती बहती यहाँ आई है, और यहाँ अत्रि ऋषि निवास करते हैं, वहां पर जाकर के तुम रहो। राम जी महाराज ऋषि को प्रणाम करके वहां से गए। देखो कितने जल्दी गोस्वामी जी ने उनको चित्रकूट पहुंचा दिया। आई नहाए सरितबर सिय समेत दउ भा, एक ही दोहे में के चित्रकूट की महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरितबर सिय समेत दउ भाए। जल्दी आए, नहाए धोए और वहां पर राम जी महाराज लक्ष्मण से कहें, लक्ष्मण स्थान तो बहुत अच्छा बताया वाल्मीकि जी ने, कितना सुंदर यहाँ ठाट बाट लगा हुआ है भाई, अब तुमको एक बढ़िया जगह देख करके और वहां कुटिया वगैरह बनाओ। तो लक्ष्मण जी महाराज वहां गए और वहां जाकर के इधर उधर देखा, हाँ बहुत बढ़िया नदी है और जो है ये चित्रकूट है, ये पर्वत बहुत बड़ा विलक्षण पर्वत है, ये एक शिकारी के समान है और खूब यहाँ पर पाप रूपी जो पशु हैं उनको ये चुक चुक करके मारता है, किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसे विचार करते हुए लक्ष्मण जी महाराज वहां पर आए और यहाँ देवताओं को पहले ही मालूम था कि राम जी यहाँ आएंगे, तो वो देवता विश्वकर्मा को साथ में लेकर के आए। कोल किरात वेश सब आए, ऐसे सीधे ही थोड़ी आ गए, चाहे इंद्र हो चाहे वरुण हो, ये कोल किरातों के वेश में आए। बहुत सुंदर उन्होंने कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया बनाई एक छोटी बनाई, एक लक्ष्मण जी के लिए बनाई एक राम जी सीता के लिए बनाई। ऐसी सुंदर कुटिया देखी, चित्रकूट के अंदर वो कुटिया देख करके इतने आनंदित हो गए राम, आहा बहुत सुंदर कुटिया है। लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतु राज समेत। ऐसे लगता है कि जैसे वसंत के साथ कामदेव रति को लेकर यहाँ निवास करते हो, ऐसे राम जी महाराज सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ वहां पर खूब आनंद से निवास करने लगे। जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता
राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय जय जय